श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। श्री जानवा माता आविर्भाव दिवस की जय। श्री मधु पंडित तिरुभाव दिवस की जय। श्री सीता नवमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवशम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज शाम को सीता देवी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अब श्रीला मधु पंडित गोस्वामी और श्रीमती जानवा माता इनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानवा माता के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं ब्रजेंद्र नंदन होइलो जय शची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय कि वृंदावन के श्री कृष्ण सचिसुत या श्री चैतन्य महाप्रभु बने। नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन शचि सुत होइलो शयी सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु हुए। उसी तरह से बलराम हुए नित्यानंद प्रभु या निताय। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और नित्यानंद प्रभु का महत्व श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में बहुत है। श्रीमती जानवा देवी उनकी पत्नी थीं। पहले तो जानवा देवी इसलिए प्रसिद्ध थीं क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थीं और नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा उनकी सेवा भावना बहुत विशेष थी। परंतु जैसे जैसे समय बीता जानवा देवी भी अपने आप में अपने गुणों के लिए अपनी वैष्णवता के लिए प्रसिद्ध हो गई सारे वैष्णव समाज में। तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके पार्षदों के साथ में प्रकट होते हैं, कभी अकेले नहीं आते हैं। तो जैसे वृंदावन में अपने पार्षदों के साथ आए तो उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में प्रकट हुए नवद्वीप में। तो जो कृष्ण लीला में हम भगवान और उनके भक्त देखते हैं, जो व्यक्तियों को देखते हैं, उनको हम गौर लीला में भी देखते हैं अलग अलग स्वरूपों में। कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु बने, नित्यानंद प्रभु बलराम नित्यानंद प्रभु बने, ऐसे अनेक हैं। तो द्वारका लीला में से भी ऐसे कई हैं जिन्होंने गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में भाग लिया है। तो द्वारका में बलराम जी की दो पत्नियां थीं। दो पत्नियों के नाम याद है किसी को? बलराम जी की दो पत्नियों के नाम क्या थे? क्विज क्या है? एक का नाम
रेवती,
एक का नाम है रेवती, वो वरिष्ठ रानी मानी जाती है। दूसरी वरुणी, वरुणी वो उनका नाम है। और रेवती किनकी पुत्री थी? राजा ककुद्म। तो आपको वो कथा तो याद होगी कि द्वारका में जब राजा ककुद्मी अपनी पुत्री को लेकर आए, बलराम जी के सामने प्रस्ताव रखा विवाह का, तो उस समय रेवती देवी बहुत लंबी थी क्योंकि वो सतयुग से आए थे। हुआ ये कि राजा ककुद्मी अपने पुत्री के विवाह के लिए पूछताछ करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, पृथ्वीलोक से ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक चले गए तो ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी थोड़े व्यस्त थे एक दो मिनट के लिए, फिर उनसे मिले, फिर पूछा आप क्यों आए हो? तो उन्हें बताया मेरे पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढने के लिए आया हूँ। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, तो बोलने लगे कि अरे जब तक तुम वापस जाओगे तब तक इतने लाखों साल बीत गए हो चुके होंगे पृथ्वी लोक के ऊपर, तो जो भी तुम योग्य वर मान रहे थे वो सारे योग्य वर अभी कब के खत्म हो गए होंगे, उनकी कितनी सारी पीढ़ियां भी खत्म हो चुकी होंगी। तो ककुद्मी राजा बड़े बेचैन हो गए कि क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई परवाह नहीं करना, अभी द्वापर युग है, द्वापर युग का अंत प्राय हो चुका है, तो इतने लाखों साल बीत गए पृथ्वी के ऊपर, हालांकि मेरे लोक में एक मिनट भी नहीं बीता, तो वहाँ जाओ, वहाँ बलराम जी से द्वारका में विवाह का प्रस्ताव रखो। तो आपको पता है कि सत्य त्रेता द्वापर और कलि में शरीर मन बुद्धि धार्मिकता इत्यादि सबका गठन होता है, लंबाई का गठन भी होता है। तो सत्ययुग में साधारण व्यक्ति भी बहुत लंबा हुआ करता था, और कलयुग में आजकल इतने लंबे हम नहीं होते हैं। और जैसे कि दो दिन पहले चर्चा हो रही थी कि एक ऐसा दिन आएगा जो बहुत ही एक बटु व्यक्ति, जो शायद हो सकता है 4 फुट का हो, वो बहुत लंबा माना जाएगा। तो सतयुग में लोग बहुत लंबे थे, तो रेवती देवी सतयुग के हिसाब से उनकी लंबाई थी। बलराम जी अपनी जगह क्षत्रिय थे, लंबे चौड़े थे, लेकिन वो द्वापर युग के नापतोल से। तो जब रेवती देवी उनके सामने आई तो बहुत ऊंची थी ऊपर, तो बलराम जी ने ऊपर देखा, रहे इससे विवाह करूंगा, इतने लंबे हैं कैसे विवाह करेंगे। तो बलराम जी ने अपना हल लिया, वो हल को रेवती देवी के कंधे पे ऐसे लगा दिया और उनको नीचे खींच दिया। तो रेवती देवी फिर ऊंचाई में, जैसे द्वापर युग की ऊंचाई है वैसे हो गई, फिर विवाह हुआ। तो जैसे बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, तो उनकी दो पत्नियां वरुणी और रेवती भी नित्यानंद प्रभु के पत्नी के रूप में प्रकट हुई। तो वरुणी बन गई नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियों का नाम बताइए। एक का तो पता होगा, जानवा माता जी, जिनके बारे में चर्चा होनी है, और दूसरे वसुधा। तो वरुणी देवी बन गई वसुधा और रेवती देवी बन गई जानवा माता, जानवा देवी। तो जानवा देवी को माँ जानवा, श्री ईश्वरी ऐसे नाम से भी पुकारा जाता है। तो जानवा माता और वसुधा देवी दोनों नित्यानंद प्रभु की पत्नी हो गई। वैसे पत्नी थी सूर्यदास सरखेल, सूर्यदास पंडित के पुत्रियां थी वो दोनों। और सूर्यदास सरखेल कौन थे, उनके पिता का नाम था कंसारी मिश्र। बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे। और उनके शायद और छह पुत्र, उनके कुल मिलाकर छह पुत्र थे, जिनमें से सूर्यदास भी एक पुत्र थे। और एक उनके पुत्र थे गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित का नाम हम सब ने किस संदर्भ में सुना है? आपने गौरीदास पंडित का नाम सुना है कौन से लीला के संदर्भ में? अनेक लीलाएं हैं, लेकिन हृदय चैतन्य। बहुत अच्छा, क्या है हृदय चैतन्य के बारे में लीला?
हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित का शिष्य रहा है।
हाँ,
तो हृदय चैतन्य उनके गौरीदास ऐसे कुछ तो लीला आता है
ऐसे कौन बता सकेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ठीक है, संक्षेप में आपको लीला सुना देते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध लीला है और ये हुई थी अंबिका कालना नाम के गांव में। हम इसी साल में फरवरी महीने में अंबिका कालना भी जाकर आए, शालिग्राम भी जाकर आए, हमने गौरीदास पंडित का हम उनके घर में गए और सूर्यदेव सरखेल के घर में भी गए, जिस स्थान में ऐसे कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु और जानवा माता और वसुधा का विवाह हुआ, वहाँ भी जाकर आए, जिस वृक्ष के नीचे वो विवाह हुआ था वहाँ पर देख के आए। अंबिका कालना में विवाह ये हुआ था कि वैसे पहले ये सारे भाई एक साथ में शालिग्राम नाम के गांव में रहते थे और सूर्यदास सरखेल गौरीदास पंडित के बड़े भाई थे, कुल मिलाकर छः भाई थे। तो गौरीदास पंडित ने अनुमति ली अपने बड़े भाई से और वो अंबिका कालना नाम के गांव में रहने चले गए। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े शुद्ध भक्त थे। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करके नौका में बैठ के, स्वयं उन्होंने नौका चलाया और वो नौके में बैठ के गंगा पार करके गौरीदास पंडित के स्थान में आए। और जिस ओर को क्या बोलते हैं, जिसे नाव चलाते हैं, वो चलाते हैं ना नाव, है वो लकड़ी का पट्टा होता है जिसे वो चलाते हैं नौका, आपको मालूम है ना? हाँ, और हाँ, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? चप्पू। तो चप्पू जो है महाप्रभु का, वो आज भी है अंबिका कलना में गौरीदास पंडित के घर में। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से लिखे हुए भगवद गीता, संस्कृत में लिखा है लेकिन लिपि बंगला है, लिपि बंगला है संस्कृत में, उन्होंने अपने हाथों से लिखा हुआ, वो अभी तक अंबिका कलना में गौरीदास पंडित के घर में है। तो वो वहाँ पर आए और बैठे, गौरीदास पंडित को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो थोड़े समय तक वो वहाँ रहे, फिर थोड़े दिनों के बाद जब जाने की बात आई तो गौरीदास पंडित को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को तो अपनी लीला करनी थी, केवल एक जगह तो बैठ के नहीं रह सकते थे, उनको जगह जगह में जाकर लीला करनी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मेरे अर्चक विग्रह को बना लेता हूँ और अर्चक विग्रह मेरे यहाँ रहेंगे। तो उन्होंने पास वाले पेड़ से विग्रह बनवाए, तो गौर निताय के पहले विग्रह बन गए। और उन्होंने कहा कि मुझ में और विग्रह में अंतर नहीं है, तो इन विग्रह की सेवा करो क्योंकि मुझे जाना है। तो आप तो जानते हैं कि भगवान से ज्यादा बुद्धिमान उनके भक्त होते हैं। तो जब महाप्रभु ने ऐसे कहा कि मुझ में और विग्रह में अंतर नहीं है, मैं विग्रह यहाँ छोड़ जाता हूँ और तुम विग्रह की सेवा करो, तो गौरीदास पंडित ने उत्तर दिया कि यदि आप में और विग्रह में अंतर नहीं है तो आप रहो, विग्रह को जाने दो। तो विग्रह उतरे और चले गए और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ऊपर सिंहासन पर जाके बैठ गए। तो जैसे वो विग्रह गौरनिताय उतर के जा रहे थे और ये गौरनिता सिंहासन पर चढ़ गए, तो जाने वाले गौरनिताय को उन्होंने नहीं 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 आप रुको आप रुको, आप इधर आओ, आप चले जाओ। तो फिर ये ऑल्टर पे चले गए और वो उतर के चले गए, फिर नहीं 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 आप वापस आओ। तो ऐसे काफी लीला हुई। तो खैर ऐसे ये सुंदर लीला हुई। उसके बाद ऐसे अंबिका कल्ला में प्रथा है कि भगवान का दर्शन, गौरनिताय का दर्शन ज्यादा समय तक खुला नहीं रखते हैं। पुजारी थोड़े समय के लिए दर्शन खोलता है, थोड़े क्षणों के लिए जल्दी से बंद कर लेता है, क्योंकि कभी कभी वो चले भी जाते हैं। और इसके पीछे और भी एक लीला है कि एक बार ये चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद की बात है, या उस समय की बात, जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ नहीं थे, तो एक बहुत धुआंधार कीर्तन चल रहा था और कीर्तन देख के उधर गौरीदास पंडित थोड़े काम सेवा में व्यस्त थे। और कीर्तन चलते चलते गौर नेताए अपने भक्तों के संग में कीर्तन करना चाहते थे, तो ऑल्टर से कूद के वो सीधे भक्तों के समाज में चले गए कीर्तन करने के लिए। गौरीदास पंडित आए, उनको सेवा करनी थी, कुछ भोग चढ़ाना था, कुछ करना के, अरे गौर नेताए कहाँ गए? एक देखा कि वो जा रहे हैं, तो लाठी लेकर उनके पीछे गए, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, वापस आओ वापस आओ, इधर आओ। तो डर के मारे गौरांग महाप्रभु जो है वो सीधे चैतन्य दास, जो एक शिष्य थे हृदय चैतन्य के, गौरीदास पंडित के, चैतन्य दास, तो उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए। तो जब ये देखा गौरीदास पंडित ने, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा जीवन धन्य हुआ कि ऐसा शिष्य मुझे मिला। और उस दिन से उनका नाम हुआ हृदय चैतन्य दास। पहले था चैतन्य दास, फिर हो गया हृदय चैतन्य दास, और फिर महाप्रभु प्रकट होकर फिर से ऑल्टर पे गए। तो उस दिन से ये ज़्यादा पर्दा खुला नहीं रहता, जहाँ भी खास करके जब कोई भक्त आते हैं कीर्तन करते हैं तो पुजारी बहुत सावधान होता है। पुजारी बिल्कुल ज़्यादा देर दर्शन खुला नहीं रखा है, क्योंकि वो सोचते हैं फिर से वो कहीं महाप्रभु यहाँ चले नहीं जाए यहाँ से। तो ये है गौरीदास पंडित। तो गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य प्रभु के बारे में भी बहुत लीला है। उनके शिष्य कौन थे? श्यामानंद। पहले उनका नाम था दुखी कृष्णदास और फिर आगे चल के उनका नाम हो गया श्यामानंद पंडित या श्यामानंद प्रभु, जो नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य के साथ जिनकी अच्छी, इनका अच्छा दल बन गया, जीव गोस्वामी के नीचे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। हृदय चैतन्य ने दुखी कृष्णदास को जीव गोस्वामी के पास भेजा शिक्षा के लिए। उसी तरह नरोत्तम दास के गुरु लोकनाथ गोस्वामी ने भी नरोत्तम दास को जीव गोस्वामी के पास भेजा शिक्षा के लिए। उधर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने शिष्य श्रीनिवास आचार्य को भी भेजा शिक्षा के लिए जीव गोस्वामी के पास, तो वह तीनों वहाँ आए। तो खैर ये गौरीदास पंडित इतने प्रसिद्ध हैं, तो उनके बड़े भाई थे ये सूर्यदास सरखेल। सूर्यदास सरखेल के दो पुत्रियाँ थीं, एक का नाम था वसुधा, दूसरे का नाम था जानवा। तो नित्यानंद प्रभु तो अवधूत थे, फिर बाद में उनकी इच्छा हुई कि हमारा विवाह होना चाहिए। तो उधर एक ब्राह्मण थे जो नित्यानंद प्रभु के लिए कोई योग्य वधु ढूंढने के लिए निकले थे, और इधर शालिग्राम में एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वो सूर्यदेव सरखेल के पास आए। ये सरखेल एक उनको पदवी दी गई थी क्योंकि वो गौड़ देश के राजा के ऊंचे पद में सेवा करते थे और उनके पास काफी धन था, तो सरखेल मतलब एक तरह का सेनापति है या कमांडर। तो सूर्यदास सरखेल के पास ये ब्राह्मण आए और कहने लगे कि जो बलराम कृष्ण आए थे 5000 वर्ष पूर्व, अभी वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। वसुदेव और रोहिणी प्रकट हुई हैं हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी के रूप में, और उनका पुत्र है वही बलराम और उसका नाम है नित्यानंद प्रभु, और काफी भ्रमण करने के बाद अभी वो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे हैं, उनके बहुत सबसे निकट के पार्षद हैं। तो मेरा प्रस्ताव ऐसा है कि ये आपकी जो पुत्रियां हैं ये वास्तव में वरुणी और रेवती हैं और ये बलराम जी की पत्नियां हैं, इसलिए इनका विवाह आप नित्यानंद प्रभु से कराओ। तो सूर्यदास सरखेल को सपने में भी ऐसे दृश्य आया और वो बहुत प्रभावित हुए। जब वो नित्यानंद प्रभु के पास गए इस प्रस्ताव को लेके, तो नित्यानंद प्रभु ने भी दोबारा उनको वही दृश्य दिलवाया कि नित्यानंद प्रभु खड़े हैं और उनके दोनों ओर माँ जानवा है और वसुधा देवी भी है, और दोनों तीनों का जो तेजस्वी रूप देखकर वो बेहोश हो पड़े वहाँ पे। फिर विवाह की तैयारियाँ हो गई और विवाह आदि सब संपन्न हो गया शालिग्राम में। कोई कहते हैं कि शांतिपुर में हुआ, लेकिन जहाँ हम वहाँ गए थे तो बोले कि शालिग्राम में उसी गांव में हुआ था, कोई कहते हैं अंबिका कलना गांव में हुआ था। तो खैर जो भी है, तो विवाह हुआ तो उनकी दो पत्नियाँ थी, जानवा माता जी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुए, परंतु वसुधा देवी के संतान गर्भ से दो संतान हुए और नित्यानंद प्रभु के ऐसे दो बच्चे माने जाते हैं। उनका नाम आपको पता है, नित्यानंद प्रभु के दो संतानों का नाम, नित्यानंद प्रभु के बच्चों का नाम?
वीरभद्र
गोसाई और गंगा माता गोस्वामी, गंगा माता। तो वीरभद्र गोसाई कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु है स्वयं, और गंगा माता है गंगा माता। और इस बार जब हम शालिग्राम आदि सब गए थे अंबिका कालना, हम वो गांव में भी गए, वो गांव का नाम भूल रहे हैं जहाँ पे गंगा माता का विवाह हुआ था और उनके पति का नाम था माधवाचार्य, मध्वाचार्य नहीं, यहाँ के मध्वाचार्य हैं वो है माधवाचार्य। और ऐसे कहा जाता है कि वो पहले महाराज शांतनु थे जिनका महाभारत में गंगा देवी के साथ विवाह हुआ था। तो हम गंगा देवी और माधवाचार्य के घर में गए, वहाँ विग्रह हैं जो गंगा देवी पूजती थी। तो खैर गंगा देवी और वीरभद्र गोसाई ये दो पुत्र हुए। वीरभद्र गोसाई को भी अधिकृत माना जाता है, वो भी क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं, शुद्ध भक्त थे। तो माँ जानवा के कोई बच्चे नहीं थे, परंतु दोनों गंगा माता और वीरभद्र गोसाई दोनों ने जानवा माता को अपना दीक्षा गुरु स्वीकार कर लिया। तो ये एक बहुत ऐसे दुर्लभ चीज़ें हैं कि एक महिला दीक्षा गुरु होती है। ये आजकल थोड़े हमारे संस्था में एक थोड़े चर्चा का विषय बन गया है कि कोई माताजी दीक्षा गुरु बन सकती है कि नहीं, परंतु ये है कि बहुत ही विरला ऐसे वैष्णव इतिहास में देखा गया है, बहुत कम। और वो भी हैं जैसे जानवा माता है या हेमलता ठाकुरानी है या ऐसे गंगा माता गोस्वामिनी है, बहुत कम ऐसे देखे जाते हैं। तो खैर दोनों ने जानवा माता से दीक्षा ग्रहण कर ली। जानवा माता जब नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु दोनों का तिरुभाव हो गया समय जानवा माता सारे गौड़ीय वैष्णवों से सबसे प्रमुख मानी जाती थी और वो सबकी सहायता करती थी, सबके ऊपर बहुत कृपा करती थी। उस समय ऐसे हुआ कि अनेक वाद उत्पन्न हो गए थे, मतभेद उत्पन्न हो गए थे गौड़ीय सिद्धांत के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के बारे में कोई लोगों को भ्रांतियाँ हो गई थी, गलत फहमियाँ हो गई थी। तो जानवा माता ने अन्य अनेक दलों के बीच में मध्यस्थी बन के ये सारे सिद्धांतों को ठीक ठाक प्रस्तुत कर लिया और जो भी मतभेद थे उनका निवारण उन्होंने कर लिया। जब नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम में आए वापस, तो उन्होंने सबसे पहला गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया। उस समय वो पुस्तक वितरण के लिए आए थे, जीव गोस्वामी पाद ने उनको भेजा था कि वापस जाना बंगाल में, रूप और सनातन गोस्वामियों के ग्रंथों का वितरण करना। तो वो चले आए थे और क्योंकि रास्ते में पुस्तक चोरी हो गए, राजा बीरहम्बीर करके डाकुओं का राजा हुआ करता था, तो उसके ज्योतिष ने बताया कि यहाँ कोई लोग आपके राज्य में आ रहे हैं जिनके पास बहुत धन है, बैलगाड़ी में भर के धन है। तो वो ज्योतिष ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार का धन है, क्योंकि वो भी एक भौतिकता वाला आदमी था और नहीं राजा को समझा। तो जो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के पास धन था वो आध्यात्मिक धन था, वो रूप और सनातन गोस्वामियों के लिखे हुए ग्रंथ थे। तो उसने अपने सेवकों से वो ग्रंथ चुरा लिए। तो तीनों ये आचार्य बहुत चिंतित हो गए, काफ़ी समय ढूंढा, लेकिन फिर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ, पुस्तकों को खोजने का प्रयास करता हूँ, आप सब आगे चलो। तो श्यामानंद पंडित आगे चले गए उड़ीसा में, जहाँ उन्होंने बहुत प्रचार किया। श्रीनिवास आचार्य भी आगे चले गए बंगाल में, दूसरी जगह प्रचार करने लगे और नरोत्तम दास ठाकुर वहीं रहे। अंततः राजा बीरहम्बीर उनके शिष्य बन गए और नरोत्तम दास ठाकुर का प्रभाव सब जगह फैल गया। नरोत्तम दास ठाकुर वैसे एक जमींदार के, बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त। तो वो वापस आए, उनके चचेरे भाई संतोष भी उनके शिष्य बन गए, अनेक ब्राह्मण भी उनके शिष्य बन गए, जबकि नरोत्तम दास एक कायस्थ परिवार से थे। तो ऐसे कई सुंदर लीलाएं हैं। तो उनके गांव का नाम था खेतुरी और इस खेतुरी गांव में उन्होंने बहुत विशाल गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया, जो इतिहास में सबसे पहला गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया था। तो उन्होंने सबको निमंत्रण भेजे और उस समय जानवा माता भी आईं और जानवा माता के निर्देशन में ये सारा उत्सव मनाया गया। अनेक विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत कीर्तन हुआ, स्वयं जानवा माता ने अपने हाथों से भोग बनाया भगवान को, फिर भोग चढ़ाने के बाद सबको उन्होंने अपने हाथों से परोसा, प्रसाद वितरण किया। तो ऐसे जानवा माता सारे वैष्णव समाज की प्राण थी। तो वो वृंदावन भी गई, वृंदावन जब गई तो वहाँ परिक्रमा करने भी गई। उस समय उनके साथ में जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव भी आए। परिक्रमा में ऐसे कहा जाता है कि जीव गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत पर प्रवचन दिया तो जानवा माता जी भी सुन रही थी। यहाँ राधाकुंड में भी गए, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन और तपस्या कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की जानवा माता ने। और वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर में वो गई और उस समय राधा रानी, वैसे बंगाल में राधा रानी या गौड़ियों में नहीं हुआ करता था, ऐसे बताया जाता है कि जानवा माता जी ने शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये राधा रानी को ले आओ। तो राधा रानी की मूर्ति तो आ गई, लेकिन वहाँ भक्तों ने देखा कि ये तो राधा रानी की तरह नहीं दिख रही, माँ जानवा की तरह दिख रही है। तब उनको पता चला कि ये वास्तव में अनंग मंजरी है, क्योंकि जानवा माता न केवल रेवती देवी है लेकिन साथ साथ अनंग मंजरी भी है। अनंग मंजरी कौन है कोई बता सकते हैं? हाँ, लेकिन कौन है वो कृष्ण लीला में? राधा रानी की छोटी बहन। राधा रानी के भाई का नाम क्या है? श्रीधाम। उनके बहन का नाम है अनंग मंजरी। उनके तथा कथित पति का नाम अभिमन्यु। तो अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है और वो बलराम के अंश विस्तार है। आपको पता है कि बलराम जी कृष्ण की सेवा पांचों रसों में करते हैं, क्योंकि वो बड़े भाई हैं तो वात्सल्य रस में उनका देखभाल करते हैं। अरे कृष्ण बीमार तो नहीं है, कृष्ण सुरक्षित तो है ना, कृष्ण ज़्यादा थक तो नहीं गए, बड़े भाई की तरह। कभी कभी लीला करते हैं एक साथ में, एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ते हैं, सख्य रस में भी सेवा करते हैं। कभी कभी जब कृष्ण थक जाते हैं तो बलराम जी कृष्ण को चामर आदि करके पंखा वगैरह से हवा देते हैं या उनके चरणों की मालिश करते हैं, दासी रस में भी सेवा करते हैं, शांत रस में सेवा करते हैं, उनकी शैया बन के, उनकी बांसुरी बन के, उनके वस्त्र गहने आदि बन के। तो बल्कि गोलोक वृंदावन धाम ही बलराम के का विस्तार माना जाता है। तो ऐसे शांत रस में भी वो कृष्ण की सेवा करते हैं। तो माधुरी रस में कैसे करते हैं? अपने आप को अनंग मंजरी के रूप में विस्तार करके फिर ये राधा रानी की सेवा करती हैं। तो ये है अनंग मंजरी। तो गौड़ गणोदेश दीपिका नाम का एक ग्रंथ है जो लिखा है कवि कर्णपुर ने, वो शिवानंद सेन के पुत्र थे। और इस गौड़ गणोदेश दीपिका में ये बताया जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं या जो गौर लीला में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण भक्त हैं वो कृष्ण लीला में कौन थे, इसकी जानकारी इस किताब में दी गई है। तो इसमें यह बताया गया है, कवि कर्णपुर कहते हैं कि जानवा माता स्वयं रेवती देवी हैं द्वारका से, और साथ साथ में वो अनंग मंजरी भी हैं। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि एक ही व्यक्ति में दो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? जानवा माता है वो एक साथ रेवती देवी और अनंग मंजरी कैसे हो सकते हैं? तो वो कहते हैं कि ऐसे गौर लीला में, गौर पार्षदों में ऐसे अक्सर देखा जाता है कि एक व्यक्ति में अनेक व्यक्ति होते हैं। मतलब जैसे ये रेवती है तो उसमें अनंग मंजरी भी प्रवेश करती हैं। तो ऐसे एक में दो या तीन व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे देखा जाता है। जैसे रामानंद राय हैं उनमें भी कई व्यक्तित्व है, वो अर्जुन सखा हैं वृंदावन के, पांडव अर्जुन भी हैं और ललिता सखी विशाखा सखी भी हैं। कोई कहते हैं ललिता, कोई कहते हैं विशाखा। तो ऐसे गौर पार्षदों में देखा जाता है। तो ये अनंग मंजरी भी जानवा माता है। तो भक्तों ने देखा कि ये जो विग्रह है ये अनंग मंजरी है, इसलिए हम देखते हैं बाद में फिर राधा रानी भी आई, राधा रानी का विग्रह भी आया राधा गोपीनाथ मंदिर में। लेकिन आज यदि हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते हैं तो हम देखेंगे कि कृष्ण के बाएं ओर कौन रहते हैं? कृष्ण की बाएं राधा रानी रहती हैं, है ना? कृष्ण जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे कौन सी ओर कृष्ण रहते हैं? जब राधा कृष्ण का विग्रह होते हैं, जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे लिए कृष्ण कौन से बाजू में होते हैं? बाएं तरफ, और दाहिने तरफ राधा रानी। तो इसका मतलब है कि कृष्ण के बाईं ओर राधा रानी रहती है, है कि नहीं? कृष्ण की बाईं ओर, हमारे दाहिने ओर जैसे हम दर्शन करते हैं, लेकिन कृष्ण के बाईं ओर राधा रानी रहती है। लेकिन राधा गोपीनाथ मंदिर में कृष्ण की बाईं ओर अनंग मंजरी है और कृष्ण के दाहिने ओर राधा रानी है। ऐसे एक ही मंदिर है जिसमें ऐसा देखा जाता है। और ऐसे भी बताया जाता है कि दूसरी बार जब वृंदावन में आई जानवा माता तो गोपीनाथ अचानक ऑल्टर से निकल आए, जानवा माता को हाथ से लेके अंदर लेके गए पर्दे के पीछे, और जब पर्दा खोला गया तो देखा कि गोपीनाथ खड़े हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि फिर वो राधा रानी की मूर्ति में लीन हो गई या वो अनंग मंजरी के रूप में रहे, ऐसे भी कहा जाता है। तो जानवा माता का तिरुभाव इस प्रकार से हुआ वृंदावन में। तो जानवा माता वहाँ वृंदावन में आके सब भक्तों के साथ बैठी, संग किया, जीव गोस्वामी के साथ, अन्य गोस्वामी के साथ भी रहे। तो उनका राधा गोपीनाथ मंदिर से बहुत गहरा संबंध है और राधा गोपीनाथ मंदिर से मधु पंडित का भी संबंध है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना की थी मधु पंडित ने। मधु पंडित गोस्वामी ये गदाधर पंडित के शिष्य थे। आपने गदाधर पंडित का नाम तो सुना है, आप सब जानते हैं गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी के रूप है, पंच तत्व में से एक है। तो गदाधर पंडित के शिष्य थे मधु पंडित गोस्वामी। मधु पंडित गोस्वामी के गुरु भाई थे अर्थात गदाधर पंडित के और एक शिष्य थे जिनका नाम था परमानंद भट्टाचार्य। उनको ये गोपीनाथ जी की विग्रह मिली थी वंशीवट में। ये मूर्ति जो है पहले वज्रनाभ ने स्थापित की थी। ऐसे अनेक मूर्तियां हैं जो कि कृष्ण के प्रपौत्र ने स्थापित की थी, वज्रनाभ। वज्रनाभ का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, कोई बता सकते हैं? कैसे कृष्ण और वज्रनाथ के बीच में और कौन कौन थे? वज्रनाथ के पिता का नाम वज्रनाथ के पिता का नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पिता का नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पिता कृष्ण। तो ऐसे वज्रनाथ कृष्ण के प्रपौत्र हुए, पौत्र के पुत्र प्रपौत्र हुए। तो उन्होंने कृष्ण के तिरुभाव के बाद अनेक मूर्तियों की स्थापना की सारे ब्रज भूमि में। तो समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ये अनेक विग्रह कभी कभी लुप्त हो गए। तो वंशीवट में ये गोपीनाथ जी की मूर्ति थी जो वज्रनाभ ने स्थापित की हुई थी। तो वो परमानंद भट्टाचार्य जो गदाधर पंडित के शिष्य थे उनको प्राप्त हो गई। तो उन्होंने फिर ये विग्रह दिया मधु पंडित को, उनको गुरु भाई मधु पंडित को। तो मधु पंडित गोस्वामी ने ये राधा गोपीनाथ की का मंदिर पहले स्थापित किया वहाँ। ऐसे बताया जाता है कि मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर और गोपीनाथ मंदिर ये सबसे पहले तीन मंदिर हैं वृंदावन के। इसके पहले और कोई मंदिर नहीं था। वज्रनाभ के बाद अनेक वर्षों तक वहाँ विग्रह रहे, फिर काल के प्रभाव से सब जगह जगह फिर वो अप्रकट हो गए। फिर जब महाप्रभु के अनुयायी वहाँ पर आए तब ये सारे मंदिरों की स्थापना एक एक करके होने लगी। ऐसे बताया जाता है कि गोपीनाथ का मंदिर सबसे पहले स्थापित हुआ था, फिर मदन मोहन मंदिर सनातन गोस्वामी द्वारा स्थापित, और गोविंद देव मंदिर शीला रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित हुआ। तो राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना मधु पंडित गोस्वामी ने की और उनके बारे में ज़्यादा तो कोई से बताया नहीं जाता है मधु पंडित गोस्वामी के बारे में, केवल इतना कि गोपीनाथ मंदिर की स्थापना उन्होंने की और ये कि वो गदाधर पंडित के शिष्य थे। तो आज उनका भी तिरुभाव दिन है। तो जानवा माता का संबंध राधा गोपीनाथ मंदिर से है और मधु पंडित गोस्वामी का संबंध भी उसी मंदिर से है, क्योंकि उन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना की। तीन प्रमुख मंदिर हैं, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ। ऐसे बताया जाता है कि मदन मोहन जो हैं वो संबंध के मूर्तिमान स्वरूप है। आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वैदिक ज्ञान को समझने के लिए तीन कदम होते हैं, संबंध, फिर दूसरा अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हमारा संबंध क्या है, ये सृष्टि क्या है, रस तत्व क्या है, जीव क्या है, ये सब समझ लेना। अभिधेय का मतलब है कि उस संबंध के अनुसार कार्य करना, अर्थात साधन भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। और प्रयोजन का मतलब है कि साधन भक्ति करने से जो साध्य की प्राप्ति होती है, जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो कृष्ण प्रेम है, वो है प्रयोजन। तो मदन मोहन संबंध देव हैं। जब हम अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मदन मोहन देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जब अभिधेय या हम साधन भक्ति करते हैं तो गोविंद देव संबंध आदि देव अभिधेय देव माने जाते हैं, और गोपीनाथ जी ये प्रयोजन देव माने जाते हैं। तो ऐसे आचार्यों ने वर्णन किया, प्रभुपाद जी भी ऐसे अपने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्यों में बताते हैं। ऐसे भी बताया जाता है इन तीन विग्रहों के बारे में कि जो मदन मोहन हैं विग्रह है कृष्ण के, नाभि से लेकर चरण कमलों तक वो बिल्कुल श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं, उनका आकार रूप सब। गोविंद देव जो हैं उनका मुखारविंद बिल्कुल श्री कृष्ण से मिलता जुलता है, और गोपीनाथ देव जो हैं वो कंधे से लेकर नाभि तक बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखते हैं। और राधा रमण मंदिर के आचार्य ऐसे कहते हैं कि राधा रमण का पूरा दिव्य शरीर ही बिल्कुल कृष्ण के समान दिखता है। तो क्या गोपीनाथ देव के बारे में ऐसे भी बताया जाता है कि कंधे से लेकर नाभि तक उनका रूप बिल्कुल कृष्ण से मिलता जुलता है, ऐसे भी बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के कारण ही आज वृंदावन है। वैसे कृष्ण तो 5000 साल पूर्व प्रकट हुए थे, लेकिन उसके बाद कृष्ण की लीला स्थली जो है वो लुप्त हो गई, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने आके ही उन स्थानों को प्रकट कराया, जैसे कि स्वयं उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट कराया, और उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामियों से आदेश दिया कि आपको कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करना है, और अन्य आदेश भी दिए थे उनको, उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण आदेश था। इसलिए बंगाल से महाप्रभु के पार्षद आए, पुरी से, बंगाल से, और वृंदावन में बसे। रूप और सनातन गोस्वामी के आने के पहले ही लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी वो आए हुए थे, शायद मधुपंडित गोस्वामी भी उनसे पहले आए थे, फिर रूप सनातन गोस्वामी आए, फिर सब अन्य गोस्वामी भी आए एक 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 करके। और इसी वजह से वृंदावन में सारे मुख्य मंदिर बने। पहले वो तीन मंदिर जैसे हमने कहा, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, उसके बाद एक एक करके सारे अन्य मंदिर भी आए। जो गोपीनाथ देव की जो मूल मूर्ति है वो अभी जयपुर में है, क्योंकि वृंदावन के जो मूल मूर्ति हैं अधिकतर राधा रमण के अलावा वो सब राजस्थान ले जाए गए, क्योंकि मुसलमानों ने, मुगलों ने आक्रमण किया समय समय पर, तो जो बड़े विग्रह थे पुजारियों ने मुगलों के डर के मारे उन विग्रहों को राजपूत राजाओं के पास भेज दिया, जो वैष्णव थे और जो शूरवीर भी थे और जो विग्रहों के मंदिरों की रक्षा करने में सक्षम थे। तो गोपीनाथ देव भी वहाँ पर हैं जयपुर में। केवल राधा रमण इतने छोटे मूर्ति थे कि ऐसे कोई डर नहीं था, इसलिए वो मूल मूर्ति हैं अभी तक। और जो वृंदा देवी में काम्यवन में वृंदा देवी हैं वो भी वज्रनाभ में स्थापित की हुई मूल मूर्ति है। राधा रमन तो स्वयं प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी को, तो गोपीनाथ देव अभी जो है वृंदावन में वो प्रतिभू मूर्ति है जो मूल मूर्ति के स्थान में रखे गए हैं। तो इसलिए ये गोपीनाथ देव का मंदिर मधु पंडित गोस्वामी का मंदिर माना जाता है। और मदन मोहन सनातन गोस्वामी का, गोविंद देव रूप गोस्वामी का, फिर गोपीनाथ मंदिर मधु पंडित गोस्वामी का, और राधा दामोदर मंदिर जीव गोस्वामी का, रूप गोस्वामी स्वयं अपने हाथों से लकड़ी से बनाकर राधा दामोदर के विग्रह जीव गोस्वामी को भेंट किए, फिर जीव गोस्वामी ने मंदिर बनवाया राधा दामोदर का, फिर श्यामानंद पंडित इन्होंने राधा श्याम सुंदर के मंदिर की स्थापना की, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमण मंदिर की स्थापना की, और उनके थोड़े साल बाद फिर अनेक अन्य मंदिर भी सब आए एक एक करके, और आज एक प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी मंदिर हरिदास स्वामी द्वारा, वो भी सप्त देवालयों में से एक माना जाता है। और हालांकि वो गौड़ीय संप्रदाय के नहीं हैं, परंतु उनको सारे गौड़ीय संप्रदाय के भक्त मानते हैं, और ये आज वृंदावन में हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के साथ साथ ये बांके बिहारी मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, सबसे अधिक लोग वहाँ जाते हैं। तो अभी हम एक भजन गाएंगे जिसमें वृंदावन के मुख्य विग्रहों का नाम लिया गया है, और उनके जो आचार्य हैं उनकी स्थापना करने वाले हैं उनके भी नाम दिए गए हैं। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय देव प्राण धन हे,
गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे।
पण धन है
God.
बताया जाता है कि जो जीव गोलोक वृंदावन में होते हैं वो अपने आप को विस्तार कर सकते हैं जैसे कृष्ण करते हैं, और वो एक ही समय दो तीन जगह भी रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में प्रभुपाद जी बताते हैं प्रहलाद के संदर्भ में कि प्रहलाद वैकुंठ में भी है और सुतल लोक में भी है। वो बोलते हैं सातवें स्कंद में कि ये ऐसे जीव के लिए भी संभव है जैसे कि कृष्ण के लिए संभव है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक जीव भी दो स्थानों में एक साथ हो सकता है, लेकिन ये हर एक जीव के लिए नहीं है, वो सिद्ध जीवों के लिए वो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। एक बार हमने तमाल कृष्ण महाराज का एक प्रवचन सुना था जिसमें वो बोल रहे थे, एक प्रश्न था उनको कि जो कृष्ण की उपासना करते हैं राधा कृष्ण की, वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भी नवद्वीप धाम है, तो जो चैतन्य महाप्रभु की उपासना करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की भी उपासना करते हैं, राधा कृष्ण की भी करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो दोनों जगह जाएंगे एक साथ। कैसे है ये अचिंत्य है, हम इसको समझ नहीं सकते। और कभी कभी ऐसे भी होता है उनके विस्तार भी होते हैं, जैसे जानवा माता अनंग मंजरी के अवतार माने जाते हैं, कई जगह अंश भी हो सकते हैं। और कोई
मदन मोहन आधा इसमें करा है।
लेकिन ऐसे वृंदावन में लोग कहते हैं कि दिखने में कृष्ण के तरह ही बिल्कुल, जो जब कृष्ण थे 5000 वर्ष पूर्व, कैसे उनके शरीर का आकृति, कैसे उनका सब कुछ बिल्कुल ठीक, गोविंद देव उनका चेहरा बिल्कुल गोविंद देव से मिलता है और यहाँ से वहां बिल्कुल कृष्ण का है, गोपीनाथ जी का, कंधे से नाभि तक और नाभि से नीचे फिर मदन मोहन, ऐसा क्या दिखने में बिल्कुल वैसे के वैसे दिखते हैं सभी कृष्ण, लेकिन कृष्ण की मूर्तियां भी अलग अलग दिखती है ना, कभी कभी कृष्ण ही है लेकिन कृष्ण की मूर्ति में भी कभी कभी आकार में थोड़ा अंतर दिखता है ना, तो इसलिए ये बताया जाता है कि ऐसे एक प्रथा है, प्रचलित बात है ब्रज में। और राधा रमण के बारे में कहा जाता है कि वो परफेक्ट कृष्ण के जैसे, हर मुख भी वैसे, कंधा भी वैसे, नाभि भी वैसे, चरण कमल भी वैसे, सब वैसे ही ठीक ठीक है। नहीं, कृष्ण एक जैसे नहीं दिखते हैं हर जगह, वो शिल्पकार के भाव के ऊपर निर्भर है, भक्त के भाव के ऊपर निर्भर है। जैसे नरसिंह देवी अलग अलग भाव में प्रकट होते हैं, कभी शांत नरसिंह रूप में, शांत रूप में आते हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी उग्र नरसिंह के रूप में जैसे मायापुर में है, वो छलांग मारने की तैयारी में है, ऐसे रूप में है, तो अलग अलग मूर्तियां हैं शिल्पकार और भक्त के भाव के ऊपर वो भी वैसे प्रकट होते हैं। इसलिए दिए गए हैं कि ये भक्त हैं जिन्होंने उस मंदिर की स्थापना की। जब राधा रमण कहते हैं, जय राधा रमण गोपाल भट्ट प्राण धन्य है, क्योंकि गोपाल भट्ट ने राधा रमण मंदिर की स्थापना की। उसी प्रकार से राधा मदन मोहन के बारे में सनातन गोस्वामी प्राण धन्य है, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने उनकी स्थापना की। अद्वैत आचार्य के बारे में मदन गोपाल कहा गया है, वास्तव में ये मदन मोहन मूर्ति का नाम पहले मदन गोपाल था और अद्वैत वट नाम का जो स्थान है वृंदावन में, वहाँ अद्वैत आचार्य ने इस मूर्ति को ढूंढा था, उनको मिला था, फिर ये आ गया सनातन गोस्वामी के पास। और ये कैसे आ गया इसके पीछे भी बहुत बड़ी लीला है, वो मथुरा के एक ब्राह्मण के पास रही, अद्वैत आचार्य ने वहां से जाते जाते मथुरा के एक चौबे ब्राह्मण को दे दिया था, वो उनकी सेवा कर रहा था, फिर वो सनातन गोस्वामी के पास मूर्ति आई, उसके बाद में उनका नाम रखा गया मदन मोहन। तो मदन गोपाल पहले उनका नाम था, इसलिए बताया जाता अद्वैत सीतानाथ प्राण धन है, सीतानाथ मतलब अद्वैत आचार्य। तो जिन्होंने मूर्ति की सेवा की विशेष रूप से, या जिन्होंने उस मूर्ति के लिए मंदिर की स्थापना की, तो उनके नाम से वो मंदिर जाने जाते हैं। श्याम सुंदर भगवान, श्यामानंद पंडित, श्यामानंद प्राण धन है, ठीक है। नहीं आता है, नहीं, फिर भी जैसे हमने कहा प्रवचन में कहा कि हालांकि वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नहीं आता, लेकिन हरिदास को सभी मानते हैं, महान भक्त थे वो, बहुत प्राचीन उनकी उनका इतिहास है, करीब 400-500 साल पहले की, 400 साल तो होंगे, वो बड़े संगीतकार थे, तानसेन के शिष्य थे। तानसेन उनके शिष्य थे और तानसेन फिर अकबर के दरबार में थे। वो हरिदास के बारे में ऐसे बताया जाता है, एक कहानी है कि सुनना चाहते हैं, टाइम है? तो जब तानसेन इतना अच्छा गाते थे अकबर के दरबार में, तो अकबर इतने प्रभावित थे, बोले कि तानसेन तुम्हारे जैसा कोई विश्व में गाने वाला नहीं होगा। तो तानसेन ने कहा, नहीं, मेरे से भी बहुत अच्छा गाने वाले हैं। तो कौन है? वो मेरे गुरु, उनका नाम है हरिदास। वो कहाँ रहते हैं? वो वृंदावन में रहते हैं। तो उनको यहाँ बुलाओ ना गाने के लिए। तो कोई भेजा गया हुआ उनको बुलाने के लिए। बोला, मैं किधर नहीं जाता वृंदावन छोड़ के। तो वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। राजा बुलाए, कोई भी बुलाए, हम नहीं जाएंगे। तो वहीं पर रहे। तो फिर राजा ने सोचा, ठीक है, वो नहीं आ रहे तो हम जाएंगे उनको सुनने के लिए। तो फिर तानसेन ने कहा कि आपको देखेंगे तो वो फिर वो गाएंगे नहीं, तो आपके लिए वो नहीं गाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं तो उनको सुनना चाहता हूँ। तो ठीक है, कोई रास्ता निकालेंगे। फिर जिस हरिदास जिस कमरे में हरिदास रुके थे, उसमें तानसेन प्रवेश कर गए और राजा अकबर को बाहर उन्होंने रुकाया खिड़की के पास कि अंदर जो बातचीत होगी क्या होगी आप खिड़की से सुन सकते हैं। तो तानसेन अंदर गए, नमस्कार किया, दोनों शिष्य गुरु के बीच में अच्छी बातचीत हुई। फिर जो विषय है उसी पर चर्चा होनी थी, वही काम तो संगीत का था, और संगीत मतलब कृष्ण का गुणगान था, और किसी दूसरे काम के लिए तो संगीत का प्रयोग नहीं करते थे हरिदास, नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो उन्होंने कहा कि तानसेन तुम गाओ जरा। तो तानसेन गाने लगे एक राग में, शायद भैरवी विराग है, कुछ जानबूझ के थोड़ा गलत गाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो हरिदास बोले, अरे क्या गा रहे हो तानसेन, ऐसा क्या गलत गा रहे हो? तो उन्होंने खुद गाना शुरू दिखाने के लिए कैसे। तो एक बार वो शुरू हो गए तो बस वो बहते गए गाते गए। और एक बार गा गए, भाव विभोर हो गए, उनको पता नहीं चला, वो कृष्ण का गुणगान करते अपने राग में आगे चले 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 चले। उधर अकबर बाहर थे, सब सुन रहे थे। उधर अकबर को भी पता चला कि तानसेन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हाँ ये वास्तव में हरिदास जैसे कोई गाने वाला नहीं है। वो बहुत प्रभावित हुए। फिर तानसेन के पास, तानसेन और अकबर वापस चले गए। फिर उन्होंने पूछा अकबर ने तानसेन से कि तानसेन तुम हरिदास की तरह क्यों नहीं गा सकते, तुम भी इतने अच्छे गाते। तभी तानसेन ने उत्तर दिया, इसके लिए कारण है, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के लिए गाता हूँ, लेकिन वो वृंदावन के बादशाह के लिए गाते हैं या सारे ब्रह्मांड के राजा के लिए गाते हैं, इसलिए उनके गाना बहुत मधुर है, और मैं एक साधारण आदमी के लिए गा रहा हूँ, इसलिए मेरा गीत इतना सुंदर नहीं है। और ये सत्य है, देखेंगे आप इतिहास में, विश्व के इतिहास में जितने भी कला, अच्छे अच्छे कलाएं हुए हैं, चाहे वो बड़े बड़े इमारतें हों, सुंदर सुंदर इमारतें हों, बड़े बड़े चित्रकला हो या शिल्प कला हो, अधिकतर वो सब भगवान से संबंधित है। किसी भी धर्म में, चाहे ईसाई धर्म में, चाहे हिंदू धर्म में, इसमें भी बड़े बड़े चर्च पुराने देखोगे, कितने बड़े बड़े सब कैसे सुंदर सब बनाए हुए उन्होंने शिल्पकार कैसे है। यहाँ भी भारत में कितने सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर हैं, किस तरह की शिल्प कला है उसमें, हम आजकल कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल ऐसे लोग मिलते ही नहीं। अभी हम यहाँ अनुभव है, एक घानी बनाने के लिए कहाँ कितनी मारामारी हुई है ना, एक थोड़े छोटे वो सब ये कलाएं सब खत्म होती जा रही है। तो ऐसे ऐसे शिल्पकार वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इतने ये सब भगवान के लिए बनाए जाते थे। जो भी संगीत है, शास्त्रीय संगीत, वो भी सब भगवान पर आधारित है। जो नृत्य है, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, सब भगवान की लीलाओं पर आधारित है। सारी संस्कृति सब भगवान के ऊपर आधारित है, भगवान के गुणगान के ऊपर। सांस्कृतिक कार्यक्रम सब भगवान पर आधारित होते थे, चाहे नाट्य लीला, जैसे कर्नाटक में क्या बोलते हैं यक्षगान, यक्षगान है, और बंगाल में यात्रा है, पहले सब भगवान के ऊपर हुआ करते थे। तो जितने भी सब संस्कृति है वो सब भगवान पर आधारित, इसलिए इतना सुंदर है। लेकिन आधुनिक काल की संस्कृति भगवान के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए थोड़े सालों के लिए रहती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ये संस्कृति इतने सालों तक, इतने सदियों तक टिकी हुई है, और इन चीजों को हमें टिका के रखना है, बचा के रखना है। इसलिए हरिदास मानते हैं अवश्य, हालांकि वो गौड़ी संप्रदाय के नहीं थे, फिर भी इसलिए सप्त देवालयों में से वो एक वृंदावन में ऐसे माना जाता है। थोड़ा अंदर जाए, वो तो शहर के बीच में है, परिक्रमा मार्ग पर नहीं आता, अंदर है बांके बिहारी के मंदिर, परिक्रमा मार्ग से अंदर आना पड़ता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।